ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का मेडल, श्रेष्ठ स्थिति, इस दुनिया में विशेष विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को और सैनिकों को मेडल प्राप्त होता है। जो अपने क्षेत्र में विशेष प्रतिभाशाली होते हैं उनको मेडल दिया जाता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी स्वयं परमात्मा हम सभी बच्चों को मनुष्य से देवता बनने के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। और जो बच्चे इन 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं उनको बाबा मेडल प्रदान करते हैं, श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल उनको बाबा देते हैं। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन जैसी स्थिति वैसी ही स्तुति होती है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं हमारा औरा आभा मंडल काम करता रहता है। तो बाबा के पास आने के बाद हमारा ये दृढ़ संकल्प हो कि मुझे श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल बाबा से लेकर ही रहना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करके रहूंगा। वास्तव में बहुत भाग्यशाली वो आत्माएं हैं जिन्हों को ये मेडल प्राप्त होता है। तो ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए विशेष हमें मुख्य 10 बातों पर प्रसाद करना होगा। उन बातों पर अगर आप प्रसाद करते जाएंगे तो गारंटी है आपको ये मेडल मिलता ही जाएगा। सबसे पहली बात, श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ स्थिति। हमारे मन में जैसे संकल्प चलते हैं, मन में जैसा चिंतन चलता है, वैसी हमारी स्थिति बनती जाती है। तो हमारे मन में सदा श्रेष्ठ संकल्पों का ही प्रवाह चलता रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। अगर कभी व्यर्थ तथा साधारण संकल्प चलते भी हैं तो ज्ञान और योग के बल से उन्होंने समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करना है। और कभी नकारात्मक संकल्प भी चलते हैं, उसके के लिए हमें आत्मिक भाव मन में रखना है और सकारात्मकता का चश्मा तीसरे नेत्र पर सदा पहनकर रखना है। तो सतही हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्पों का प्रवाह चलता रहेगा और हम श्रेष्ठ स्थिति की ओर अग्रसर होते जाएंगे। दूसरी बात, श्रेष्ठ बोल से श्रेष्ठ स्थिति। हमारे बोल श्रेष्ठ हो, महान हो, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाने वाले हो, कल्याणकारी हो। जैसे ब्रह्मा बाबा के बोल श्रेष्ठ थे, सबके लिए कल्याणकारी थे, इसलिए महावाक्य कहलाते थे। तो ऐसे ही हमारे बोल सदा मुख से निकलते रहें, क्योंकि हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। छोटी सी बात आपको बताता हूं। एक बार राजा, सुबेदार और सिपाही तीनों जंगल में घोड़े पर बैठकर शिकार करने गए। राजा के घोड़े के पैर में घुंघरू थे। जंगल में जैसे गए, उन्होंने अपने घोड़े पेड़ को बांधे, शिकार करने चले गए। जैसे शिकार करके वापस आते हैं तो राजा का घोड़ा वहां से गायब था। राजा को चिंता हुई। राजा ने सिपाही को कहा, जाओ मेरा घोड़ा जंगल से ढूंढ के लेके आओ। सिपाही एक रास्ते से गया, रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा था। तो सिपाही ने उससे कहा, हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? उसने कहा, नहीं भाई। सिपाही को वापस आने में देरी हुई तो राजा ने सुबेदार को भेजा। सुबेदार वहीं से गुजर रहा था जहां अंधा व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, बाबा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? उसने कहा, नहीं। तो उसको भी वापस आने के लिए देरी हो गई। तो राजा स्वयं घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े उसी रास्ते से जहां वो व्यक्ति बैठा था। तो राजा ने उनको कहा, महात्मा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? उसने कहा, नहीं राजन। तो राजा चौंक गया, पूछने लगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? उसने कहा, राजन, आपके बोल बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े हैं और राजा समान है। इतना सत्कार देने वाला कोई बड़ा व्यक्ति होगा? तो हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। तो मुख से सदा श्रेष्ठ बोल निकलते जाने से हमारी श्रेष्ठ स्थिति स्वतः ही बनती जाती है। तीसरी बात, श्रेष्ठ दृष्टि से श्रेष्ठ स्थिति। कहते हैं, नजर बदली तो नजारे बदल जाते हैं। जिनकी दृष्टि बहुत ऊंची होती है, महान होती है, उनके लोग दृष्टांत देते हैं। तो हमारी दृष्टि ऊंची हो, कल्याणकारी हो, वरदानी हो और सिविलाइज्ड हो। जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि थी, बाबा कभी भी किसी की कमी नहीं देखते थे और सब पर प्यार ही बरसाते थे, क्योंकि बाबा की दृष्टि कल्याणकारी हर बच्चे के लिए थी। तो ऐसे हमारी भी दृष्टि वरदानी दृष्टि हो, आत्मिक दृष्टि हो, रूहानी दृष्टि हो, दृष्टि में दिव्यता हो। देह रूप में देखेंगे तो ये साधारण दृष्टि कहते हैं, लेकिन दिव्य स्वरूप को देखते हैं तो उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ दृष्टि से हम श्रेष्ठ स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। चौथी बात, श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ स्थिति। जब हम कहीं पर भी बैठते हैं तो मन बाह्य रूप से कुछ न कुछ सोचता रहता है, और हमारा सुसुप्त मन, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो कुछ और सोचता है। और उस सुसुप्त मन का कनेक्शन अपने वृत्ति के साथ होता है। अब वृत्ति को अगर हमें श्रेष्ठ बनाना है तो अर्धचेतन मन को हमें श्रेष्ठ बनाना होगा। और अमृत वेले ये सुषुप्त मन जागृत अवस्था में होता है, इसलिए अगर हम बहुत अच्छा अमृत वेले का योग करते हैं तो हमारे वृत्ति में परिवर्तन आने लगता है, और सारे दिन भर में आत्मिक भावना सबके प्रति रखते हैं तो ये जो वृत्ति है धीरे धीरे श्रेष्ठ बनती जाती है, शुद्ध बनती जाती है और पॉजिटिव बनती जाती है। परिणाम स्वरूप हम श्रेष्ठ स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो वृत्ति हमारी श्रेष्ठ हो। पांचवी बात, श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ स्थिति। हमारे कर्म श्रेष्ठ स्थिति बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे कर्म दूसरों को प्रेरणा देने वाले हो, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाले हो, और उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने जाकर खड़े हो जाइए और अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्म उनके स्थूल और सूक्ष्म कर्मों से भेंट कीजिए, चेक करते जाइए और चेंज करते जाइए, तो धीरे धीरे आपके कर्मों में श्रेष्ठता आती रहेगी। और कमल के भांति अगर हम कर्म करते जाएंगे तो हमारे कर्मों में दिव्यता आती जाएगी। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते रहने से संगम युग में हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। और जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारे साथ श्रेष्ठ संस्कार चलेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संस्कार के रूप में हमारे साथ चलते हैं। और जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसके आधार पर हमारा भविष्य में जन्म ऐसे रॉयल परिवार में होता है। तो इसलिए कर्मों में श्रेष्ठता बढ़ती रहें। इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। छठवीं बात, श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ स्थिति। सत्य ज्ञान के सागर बाबा हमें सत्य ज्ञान हर रोज सुनाते हैं। उस श्रेष्ठ ज्ञान को, सत्य ज्ञान को जितना हम हजम करते हैं, स्थूल शक्तिशाली भोजन करने से शरीर मजबूत होता है, तो ऐसे ज्ञान का भोजन शक्तिशाली प्राप्त करने से आत्मा भी शक्तिशाली श्रेष्ठ बनती जाती है। तो मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान का भोजन को हमें हजम करते जाना है। और जैसे जैसे हम मनन चिंतन करते जाते हैं, हमें दिव्य अस्त्र शस्त्र मिलते जाते हैं। और उसमें भी विशेष अटूट आत्मविश्वास और अदम्य साहस, ये सबसे जबरदस्त हथियार हमारे पास होना जरूरी है। युद्ध के मैदान में अगर विजय स्थिति को अपनाना है तो ये दो हथियार मेरे पास होने चाहिए, अटूट आत्मविश्वास और अदम्य साहस। लेकिन इसके लिए मनन चिंतन करना हमारी हाबी हो तो धीरे धीरे ऐसे श्रेष्ठ पढ़ाई से हमारी स्थिति श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ती जाती है। और जो बहुत रॉयल होते हैं वो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, मिट्टी से नहीं खेलते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। तो हमें श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन करते रहना है। आठवीं बात, सातवीं बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास को बढ़ाते चलें। क्योंकि इस बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बना दिया है, हीरे की डिब्बी कितनी भी सुंदर हो, आखिर वैल्यू हीरे की होती है, डिब्बी की नहीं होती है। इसलिए हमें देह में रहते हुए देह से न्यारा अनुभव करना है। जैसे हम देह से न्यारा अनुभव करते हैं, बुद्धि का कनेक्शन देह से, देह के संबंधों से, पदार्थों से, दुनिया से कट हो जाता है। जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा अनुभव करते हैं। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ भान में, आत्मा के भान में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। विधि पूर्वक हमें आत्मा का अभ्यास करना है, बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के स्वरूप को बार बार देखते जाना है। और उसमें जितना लंबा समय हो उतना स्थित रहना है। तो स्थित रहने से धीरे धीरे हमारी स्थिति निखरती जाएगी। स्थिति माना जिसमें हम स्थित हो जाते हैं, जिस भान में स्थित हो जाते हैं वैसी हमारी स्थिति बनती जाती है। तो आत्मा के भान में ही हमें सारे दिन भर में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाना है और आत्मिक दृष्टि से ही सबको देखना है। तो धीरे धीरे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर आप श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं, उसका सीक्रेट क्या है, ये प्रश्न किसी से भी पूछेंगे तो जवाब आपको एक ही मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद मैंने आत्मा के अभ्यास को बहुत घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के पक्का किया था, तब मैं ऐसा श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हुआ। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं। मधुबन में जाते ही ब्रह्मा बाबा खड़े हमें दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में, ज्ञान के स्तंभ, पवित्रता के स्तंभ, शांति के स्तंभ और शक्ति के स्तंभ। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति और स्तंभ अर्थात अचल और डोल स्थिति। माया कितना भी हिलाएं नहीं हिला सकती है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति आत्मा के अभ्यास से ही प्राप्त की और शिव बाबा से मेडल प्राप्त किया श्रेष्ठ स्थिति का। आठवीं बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाना होगा। हम माया के गुलाम बनकर हीन भावना के खड्डे में पड़े थे, उस खड्डे से निकालने के लिए बाबा ने हमें स्वमान के टाइटल दिए। स्वमान का हाथ पकड़ते ही बाबा का साथ हमें मिलता है। उस हीन भावना के खाई से हम ऊपर उठने लगते हैं। तो हम सभी महान आत्माएं हैं, सतयुग में बहुत ऊंचे स्टेटस को प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन जब वो पद प्राप्त होगा अपने चेहरे पर ऐसी नशे की स्थिति, मस्ती की स्थिति, रॉयल्टी दिखाई दें, उसके लिए अभी से हमें ये समान में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। कहते समान ही हमें बाप समान बनाता है, इसलिए घर से बाहर निकलते हैं तो टाइटल, समान का टाइटल रूपी टाई जरूर पहनकर जाना है। तो समान का टाई पहनेंगे तो आपके चेहरे पर वो रूहानी नशे की झलक और फलक दिखाई देगी। ब्रह्मा बाबा को हमेशा नारायणी नशा रहता था, उसके परिणाम स्वरूप बाबा ने ऐसा श्रेष्ठ पद नारायण का प्राप्त किया। तो जितना ऊंचा नशा होता है, जितना ऊंचा समान होता है, उतना ऊंचा पद हमें प्राप्त सतयुग में जरूर होता है। राजा को जितना नशा होता है, महाराजा को उससे बढ़कर होता है, विश्व महाराजा को उससे बढ़कर होता है। तो हमें श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए समान के सिंहासन पर बैठे रहना है। हम स्वराज अधिकारी राजाएं संगम युग में होते हैं और सतयुग में राजा महाराजा का पद हमें बाबा दिलाते हैं। प्रकाश मणि दादी जी ने जाते जाते दो शब्द का मंत्र दिया था, दादी जैसा बनना चाहते हैं बस दो शब्दों को धारण करो, सदा सम्मान में स्थित रहो और सबको सम्मान देते रहो, दादी जैसा बन जाओगे। क्योंकि समान में रहने से स्थिति हमारी श्रेष्ठ होगी और सबको सम्मान देने से हम निर्विघ्न रहेंगे। कोई भी आत्मा हमारे लिए विघ्न रूप नहीं बनेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे सम्मान मिले। दो, खुले दिल से दो, हमें जेब से कुछ देना नहीं पड़ता है, केवल बड़ा दिल रख के मान देना पड़ता है। तो ऐसे श्रेष्ठ समान में हमें सदा रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करें, उस सिंहासन को हमने नहीं छोड़ना है। बाबा हमें बिठाते हैं, माया उससे उतारने का प्रयास करती रहती है, क्योंकि ये समान का सिंहासन बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। तो स्वयं ही स्वयं को मान देना अर्थात स्वमान में स्थित रहना। कोई मुझे मान दे दे न दे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मुझे भगवान से मान मिला है, भगवान ने इतने बड़े बड़े टाइटल मुझे दिए हैं, उसमें मुझे मस्त रहना है। नवी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए परमात्म अभिमानी बनते जाना है। कहते ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ और साथ अनुभव करना है। इन नीचे वालों ने तो हमें नीचे ही गिराया। एक ही है ऊपर वाला जो हमें ऊपर उठाता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है उपराम स्थिति की अनुभूति करना। जब हम उपराम होते हैं तो ऊपर वाले राम को सहज याद करते रहते हैं और उस परमात्मा का साथ हमें मिलता है। अब जो सारे संसार को भाग्य बांटता है, खजाने बांटता है, उसका साथ अगर मिल जाए तो किसी बात की कमी हमें नहीं रह सकती है। तो बाबा के साथ परम धाम में बड़े ठाट से हमें बैठे रहना है। परमात्म अभिमानी बनना अर्थात परमात्मा के साथ बैठकर नशे का अनुभव करना। लेकिन तीन बातों पर हमें ध्यान देना है बाबा के पास बैठते समय। पहली बात, बाबा के बाजू में हमें बैठते समय कभी भी हिचकना नहीं है। कभी कभी हमारा मन खाता है, बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्यूरिटीज हैं, काले दाग है। नहीं, हमें बड़े ठाट से बैठना है, बिल्कुल नजदीक बैठना है। उसके दो कारण हैं। बाबा ने हमें बच्चियों के रूप में स्वीकार किया, बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के गोदी पर ही नहीं कंधे पर भी बैठने का अधिकार है। दूसरी बात, बाबा ने हम आत्माओं को सजनी के रूप में स्वीकार किया है। सजनी कैसी भी हो उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है, इसलिए बड़े मस्ती से हमें बैठना है। दूसरी बात, कभी भी साधारण मन की बैठक ना हो। बाबा तो सर्वशक्तिवान है और मैं साधारण आत्मा हूं, नहीं। आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए, तब बाबा जो सर्वशक्तियों के स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे बहुत शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण कर सकेंगे। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ऐसे पावरफुल बैठक में बैठते हैं तो शक्तियों का अमृत, उस अमृत सागर से हम बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करते रहते हैं। परमात्म मिलन का भरपूर आनंद लेते हैं। मिलन का मजा तब आता है जब राजा से राजा मिलता है, राजा से अगर भिखारी मिले तो वो मिलना अच्छा नहीं होता है। तो तीसरी बात है, हमें बाबा को कुछ मांगना नहीं है। जब बाबा के बाजू में बैठते हैं तो बाबा मुझे शांति दो, शक्ति दो, नहीं। बच्चे माना अधिकारी, भगत माना भिखारी। बाबा कहते मेरे पास जो खजाने हैं वो खजाने आपके लिए हैं, आपका उस पर अधिकार है। मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं, सारे संसार को अगर बांट दो तो भी वो नहीं कूटते हैं। इन खजानों का मैं क्या करूं, ये तो आपके लिए हैं। तो हमें अधिकारी स्थिति में बैठना है। तो परमात्म अभिमानी स्थिति का हम आनंद लेते रहेंगे। बस बाबा के संग में बैठो और बाबा के रंग में रंगते रहो। योग है क्या? योग करना अर्थात ज्ञान सूर्य स्नान करना। इस देह रूपी कमरे से बाहर निकलकर मैं आत्मा सूरज मुखी बनकर ज्ञान सूर्य को देख रही हूं परम धाम में, और ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। एक तक पूरी एकाग्रता से उस ज्ञान सूर्य को देख रही हूं और मेरा दिल यही गा रहा है, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, न देखो तुझे तो खिले न ये जिया, एक पल भी तुझे नहीं देखती हूं तो मेरा जिया लगता नहीं, मेरा जिया खिलता नहीं। तो बस उस ज्ञान सूर्य को देखते रहे, देखते रहे, झूमते रहे। उसका आनंद ले। अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं, गोल्डन मोमेंट्स कौन से हैं, क्या जवाब देंगे? जब मैं आत्मा स्वयं को डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में परम धाम में अनुभव करती हूं, ये पल मेरे जीवन के डायमंड मोमेंट्स हैं, सबसे खुशनुमा पल है। ये मेरी पूंजी है, इस पूंजी को मुझे बढ़ाते जाना है, क्योंकि सारे कल्प में ये मौका मुझे मिलने वाला नहीं है। बाबा के पास दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है, उसके पास बैठे रहो। कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के साथ आप बैठते हैं, दुनिया की सर्वोच्च सत्ता के साथ आप बैठते हैं, तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ स्वतः ही बनती जाएगी। तो जितना हो सके देह से न्यारा और बाबा का प्यारा अनुभव करते रहें। बाबा के और हमारे बीच में एक छोटी सी दीवार है, ये देह के भान की, उसको हटा दो, उसको भुला दो, तो बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करते जाएंगे। बॉडी को भूलने से गॉड की कंपनी मिलती जाती है, और जितने बॉडी के भान को भूलते जाते हैं उतनी गॉड की कंपनी बढ़ती जाती है, और उनसे खजाने हम प्राप्त करते रहते हैं, माला माल होते रहते हैं, और हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है। दसवीं बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में हमें करते जाना है, क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है और कभी कभी बोर भी हो सकता है, रुखा सुखापन भी लगता है। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, 24 घंटे में कंपनी देने के लिए आपको तैयार हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। सामने से वो कंपनी ऑफर कर रहे हैं तो हमें अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा को फ्री छोड़ना ही नहीं है, बिजी रखना है। बस बैठो मेरे बाजू में, मुझे देखते रहो, मुझे सकाल देते रहो। बैठा है बाबा आपको सकाल दे रहे हैं, किचन में भोजन बना रहे हैं, बाबा बैठ के मुझे सकाल दो। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अलग अलग संबंधों में हमें याद करते जाना है, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो विभिन्नता चाहता है, वो वैरायटी चाहता है। भोजन कितना भी अच्छा है लेकिन वो बार बार वही मिलेगा तो बोर हो जाता है। तो हमें 11 प्रकार के संबंधों की अनुभूति अमृत वेले से रात्रि तक करना है। पहला, बाप के रूप में अमृत वेले याद करना है, बाप से वर्षा शक्तियों का प्राप्त करना है, प्यार भी प्राप्त करना है। जब सेवा केंद्र पर जाते हैं शिक्षक के रूप में बाबा को अनुभव करना है। जो शिक्षक मुझे होमवर्क देते हैं उसको करके मुझे आना है, ताकि मेरे टीचर का हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहेगा। सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं, घर जाते हैं तो सदगुरु के रूप में बाबा को अनुभव करो, सदगुरु का हाथ आपके मस्तक पर अनुभव करो। सारे दिन भर में उनकी छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। उसके बाद चौथा संबंध है सखा का, खुदा मेरा दोस्त है, इतने लंबे समय के बाद मुझे मिला है, मैंने पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर उसके साथ दोस्ती की है, उसको मुझे बखूबी निभाना है, क्योंकि अंतिम समय ये मेरा दोस्त काम में आएगा, बाकी कोई काम में नहीं आएगा। तो मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ बैठ रहा है, मैं उनके साथ दिल के लेन देन कर रही हूं, बहुत अच्छी तरह से सखा के रूप में अनुभव करो। पांचवा, बाबा को बच्चा बना लो। बाबा को वर्षा हमें जरूर देना है, क्योंकि ये बच्चा कृष्ण जैसा ही नहीं, कृष्ण से बढ़कर चढ़कर है। ये बच्चा मुझे अंत तक साथ देने वाला है, इसलिए मुझे इसको वर्षा जरूर देना है। उसके बाद छठवां संबंध है मां का। कहते हैं मां की ममता बड़ी निराली होती है, सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन मां की प्यार ममता नहीं भूल पाते हैं। बताओ भाई, 83 जन्मों की मां को तो छोड़ दिया, अभी 84 जन्म की मां में फंस गए। जैसे उनको छोड़ा वैसे इनको छोड़ना है। कितनी मां है भाई आपको मिली है, हैं जी, कितनी मां मिली है ना, बहुत लाडले बच्चे हैं ना बाबा के, हैं जी, बोलो ना कितनी मां का प्यार मिल रहा है आपको। 6 माँ है आपको, लिखो, पहली भारत मां जिसके मिट्टी से ये शरीर बना हुआ है, धरती मां, भारत मां। दूसरी मां जिसने इस शरीर को जन्म दिया है। तीसरी मां जिसने मुझे अलौकिक जन्म दिया है, ब्रह्मा मां। चौथी मां जगदम्बा माँ जो मुझे अभी भी सूक्ष्म रीति से पालना दे रही है, सवार रही है, और पांचवी माँ ड्रामा रूपी माँ जब भी कोई तूफान आता है मुझे आंचल में छिपा लेती है, बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी पालना देती है। और सबसे बड़ी मां परमात्मा, वो ऊपर वाली सबसे बड़ी मां। तो कितने हम लाडले हैं, कितनी पालना हमें भगवान दे रहा है। सातवां संबंध है साजन, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। दिल का प्यार का सौदा उस एक के साथ ही करना है, किसी के साथ मुझे शेयर नहीं करना है। कहते हैं अपने दिल का प्यार कोई किसी के साथ शेयर करता है तो ऐसा शेयर करने वाला शेर की तरह इस माया की दुनिया में दहाड़ नहीं सकता है। इसलिए मैंने बाबा के साथ ही मेरे प्यार का सौदा किया है, किसी को अधिकार नहीं है प्यार का शेयर करने का। आठवां संबंध है बाबा मेरा रक्षक है, प्रोटेक्टर है। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, अब वो सर्वोच्च रक्षक है, वो साथ मेरे सदा रहता है, मैं हमेशा निर्भय रहती हूं, निश्चिंत रहती हूं। नवा संबंध है बाबा मेरा गाइड है, जब भी दुविधा में रहते हैं, मूंझ जाते हैं, बाबा को बुलाओ, बाबा गाइड करो मुझे। दुनिया वाले गाइड तो कल का भी नहीं जानते हैं, ये तो तीनों कालों का जानता है और निस्वार्थ गाइडेंस देता है और उसमें मेरा कल्याण है। दसवां संबंध बाबा मेरा सर्जन है, कोई पुराना संस्कार है उसकी हमें परिवर्तन करना चाहते हैं, इसमें सफलता नहीं मिलती है, दिल सकस्त नहीं होना है, बाबा को बुलाओ सर्जन के रूप में और उसकी सर्जरी करा दो, उससे फ्री हो जाओ। और ग्यारहवां संबंध है बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। भाई क्यों करना है ये? धर्मराज तो सूक्ष्मोतन में मिलेगा, धर्मराजपुरे में मिलेगा, लेकिन बाबा धर्मराज के रूप में मुझे देख रहा है, इसलिए मैं छोटी मोटी कोई भी गलती नहीं कर सकता हूं, कर सकती हूं। वंडरफुल स्थिति बनाना है, आए हैं ना बाबा के पास वंडरफुल स्थिति बनाने के लिए, तो वन डर फूल, एक का डर फुल होगा, पूरा होगा, तो हमारी स्थिति वंडरफुल होगी, गारंटी है। तो ऐसी इन 10 बातों में हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते रहना है तो धीरे धीरे हमारी स्थिति निखरती जाएगी। हमेशा शांति स्तंभ को अपने सामने ब्रह्मा बाबा को रखो और अपनी स्थिति को कंपेयर बनाते जाओ, कंपेयर करते जाओ, मुझे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। कहते स्थिति नहीं बनाई तो कुछ नहीं हमने बाबा से प्राप्त किया। इसलिए बाबा ने आपको ऐसा चांस दिया, इसी सृष्टि श्रेष्ठ धरणी है मधुबन, ऐसी धरणी पर तपस्या करने का गोल्डन चांस आपको दिया, तो इसका यही लाभ लेना है। बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें अलौकिक करते जाना है और जैसे जैसे अलौकिक अनुभव का स्टॉक बढ़ता जाएगा श्रेष्ठ स्थिति हमारी बनती जाएगी। ओम शांति है।